नमस्कार भारत, तारीख 13 नवंबर, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान में सूफी दरगाह शाह नूरानी में हुए भीषण धमाके में मृतकों की तादाद बढ़कर हुई 52, घायलों को कराची लाया गया।
अंधेरा था इलाके में और हमारे जो कराची के ड्राइवर थे वो जानते कम थे। रास्ते में जो टाइम जाया हुआ, हलाकतों की जो तादाद ज्यादा हुई है ना, वो रास्ता लंबा होने की वजह से हुई। 5-6 घंटे लगे अस्पताल में लाने के लिए मरीजों को।
भारत में 500,000 के नोट बंद होने के बाद नकदी की चाहत में सुबह से देर रात तक लोग चक्कर लगा रहे हैं बैंकों का।
जो करेंसी का जो मूवमेंट था, ये पहले 2-3 दिन पहले से ही या 4-5 दिन पहले से ही शुरू किया जाना चाहिए था कि भाई इससे अब तक हमारा एटीएम्स के पास एक रात पहले हमारा करेंसी तैयार है यहाँ पर डालने के लिए।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। पाकिस्तान में एक सूफी दरगाह में हुए धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। कराची के उत्तर में ये दरगाह बलूचिस्तान प्रांत में आती है। धमाका कल देर शाम तब हुआ जब दरगाह में करीब 500 लोग एक धार्मिक आयोजन के लिए जमा हुए थे। दूर दराज के इलाके में स्थित होने की वजह से यहाँ एम्बुलेंस और डॉक्टरी मदद पहुँचने में खासा वक्त लग गया। कोलंबिया सरकार और फार्क विद्रोहियों ने हवाना में एक नए शांति समझौते का ऐलान कर दिया है, जिसमें देश के अलग अलग तबकों के सुझाए गए बदलावों को शामिल किया गया है। इससे पहले सितंबर में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को कोलंबिया की जनता ने एक जनमत संग्रह में नकार दिया था। लोगों का तब कहना था कि वो समझौता विद्रोहियों के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही झुका हुआ था। बोगोटा में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने अभी बताया कि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस नए शांति समझौते को भी जनमत संग्रह की प्रक्रिया से गुजरना होगा या नहीं। हालांकि कोलंबिया में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि उनकी सहमति के बिना ये समझौता लागू नहीं किया जा सकता। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने अमरीका की संघीय जाँच एजेंसी FBI के निदेशक को जिम्मेदार ठहराया है। हिलरी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले FBI निदेशक जेम्स कूमी ने उनके ईमेल की जो दोबारा जांच करवाने की बात कही, उससे उनके चुनाव प्रचार अभियान को जबरदस्त धक्का पहुंचा। इस बीच निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। न्यूयॉर्क स्थित ट्रंप टावर के सामने 2,000 लोगों की भीड़ ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार माइकल मूर भी शामिल रहे। उन्होंने ट्रंप टावर में दाखिल होने की और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा, चुनाव परिणाम के खिलाफ जन क्रांति की जरूरत है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ना ले पाएं। वो असंवैधानिक राष्ट्रपति हैं, लोग उन्हें इस पद पर नहीं देखना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करते फिल्मकार माइकल मूर, न्यूयॉर्क के अलावा शिकागो में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट बंद कराने का उनकी सरकार का फैसला भ्रष्टाचार को रोकने और व्यवस्था को साफ करने के लिए लिया गया है। वो जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और ऐसे में इस कदम की वजह से लोगों को जो परेशानी हो रही है वो समझते हैं। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की एक सूफी मुस्लिम दरगाह शाह नूरानी में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है, जबकि दर्जनों घायल हैं। ये धमाका कल कुजदार जिले के दूर दराज के इलाके में हुआ। शाह नूरानी दरगाह में जिस समय ये धमाका हुआ, उस वक्त वहां धमाल जारी था। शनिवार और रविवार को कराची के अलावा तमाम अलग अलग इलाकों से भारी तादाद में लोग इस दरगाह पर आते हैं, जिसके चलते यहाँ काफ़ी भीड़ थी। वो लोग खुशकिस्मत थे जो थोड़ी देर पहले ही दरगाह से बाहर निकल आए थे। एक प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि जब वो दरगाह में थी तो किसी ने उनसे कहा था दरगाह से बाहर निकल जाओ,
ये यहाँ से जल्दी जल्दी निकलो, नहीं तो बहुत मुसीबत में आप
धमाका होने से पहले
तुम बहुत मुसीबत में आ जाओगे। तो ये बोला, मैंने 2 कदम आगे निकल गई और धमाका हो गया।
लेकिन हर कोई खुशकिस्मत नहीं था। धमाके के बाद दरगाह में हर तरफ चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, वो लोग जो अपनों को दरगाह पर छोड़कर वापस आ गए थे, उनकी चिंता में लग गए।
जब हम लोग वहाँ पे थे, जब तो ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ धमाका अभी सुना है ना, वह वहीं पर ही हम लोग खड़े थे। वहाँ से 3 बजे टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वहाँ से निकले तो मगरिब के टाइम पे ये फोन आई कि ये धमाका हुआ है।
ये वो लोग हमें भी रोक रहे थे कि आप लोग भी हमारे साथ कल जाना, मगर हम लोगों ने बोला अभी तुम लोग बच्चों के साथ हो, फैमिली है, रहने में करने में तकलीफ होगी, हम लोग आगे निकल जाते हैं, तुम लोग भले सुबह आते रहना। तो लोग सारे उधर ही हैं, किसी से कोई रابطہ नहीं है, कोई सहूलत ही नहीं है, तो रابطہ कैसा होगा।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की गृह मंत्री सरफराज बुगती से बीबीसी उर्दू संवाददाता उमर अफरीदी ने इस धमाके के बारे में बात की।
ये बलूचिस्तान का बड़ा दूरदराज इलाका है और हमारा इस वक्त जो फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। और रात के टाइम हम हेलीकॉप्टर ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है और वो है बैर रोड। तो उस पर हमारी एम्बुलेंसेज पहुंच रही हैं, बल्कि कुछ पहुंच चुकी हैं। हमारा सारा फोकस जो है वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पे है।
तो किसने, आपके ख्याल में कौन इसके पीछे हो सकता है?
ये कहना भी जी कबल इस वक्त है कि अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी तो मालूम होगा कि कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है।
ये थे बलूचिस्तान प्रांत के गृह मंत्री सरफराज बुगती। बचाव दलों को वहां पर पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। धमाके में गंभीर रूप से जख्मी लोगों को कराची के अस्पतालों में लाया गया है। ईदी फाउंडेशन के प्रमुख फैसल ईदी ने बताया कि रास्ता लंबा होने के चलते काफी दिक्कतें हुई हैं।
30 से ज़ायद जख्मियों को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है और अब तक जो है वो 15 से ज़्यादा लाशें आ चुकी हैं और अभी 15 लाशें पीछे हमारी सारी गाड़ियों में आ रही हैं। और दुश्वारी सबसे बड़ी एक और ये भी थी कि अंधेरा था इलाके में और वो उस इलाके को हमारे जो कराची के ड्राइवर थे वो जानते कम थे, लेकिन रास्ते में जो टाइम ज़ाया हुआ, हलाकतों की जो तादाद ज़्यादा हुई है ना, वो रास्ता लंबा होने की वजह से हुई। 5-6 घंटे लगे अस्पताल में लाने के लिए मरीजों को, तभी इमदाद उस इलाके में नहीं है कहीं पर भी।
ये थे पाकिस्तान की स्वयंसेवी संस्था ईदी फाउंडेशन के प्रमुख फैसल ईदी। पाकिस्तान में सूफी फलसफे में यकीन करने वालों की तादाद लाखों में है, लेकिन चरमपंथी लगातार इसका विरोध करते आए हैं। इस साल चरमपंथियों ने कई हमले करके आम लोगों को निशाना बनाया है। ये पूरी घटना किस तरह से घटी, पूरा ब्यौरा सुनिए बीबीसी संवाददाता मोहम्मद काजिम से।
ये वाकया हुआ है मगरिब के वक्त जिला खुजदार के इलाके शाहनूरानी में। ये खुजदार की तहसील है, वड इसका इलाका है और ये सर्दी इलाका है जिला लसबेला के साथ, वो भी बलूचिस्तान का जिला है। तो यहाँ मगरिब के वक्त शाहनूरानी के मजार में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा थी। मेरी बात हुई कमिश्नर कलार डिवीजन आशिम गिलजी से, उन्होंने बताया कि मगरिब के वक्त वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। ये जो जिला खुजदार है बलूचिस्तान का एक इंतहाई अहम और असास किस्म का जिला है और ये जिला कोयटा कराची हाईवे पर वाकया है। और यहाँ जो है ना शाहनूरानी का मजार है, यहाँ हफ्ता और इतवार के दिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा होती है इस मजार में और ज्यादातर लोग कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से इस मजार में जो है ना ज़ियारत करने के लिए आते रहते हैं। इस इलाके में जो खास शाहनूरानी का मजार है, ये पहला धमाका है जो इस मजार में हुआ है। सरकारी हुकाम का कहना है कि वहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, FC है और आर्मी जो करीब इलाकों में है, उनके भी 2 प्लाटून को जो है ना इस इलाके में भेजा गया है ताकि वो वहाँ जो है ना रेस्क्यू का काम कर सकें। तो इस हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक सूफी मुस्लिम दरगाह शाह नूरानी में धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्स और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्स पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारत में आजकल सुबह होने से लेकर देर रात तक लोग ATM के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि पुराने नोटों के बदले नए नोट उन्हें मिलेंगे तो जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं नए पुराने नोटों को लेकर सरकार की सफाई व विपक्ष के सवाल, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कल क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट के साथ है संदीप सोनी।
आप बताइए। ये आवाजें थीं दिल्ली में एक बैंक के बाहर जमा हुए लोगों की, जिनकी शिकायत है कि घंटों कतार में लगने के बावजूद उन्हें 1000 और 500 के नोट बदलने का मौका तक नहीं मिला। भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने की घोषणा के बाद सरकार ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में लोगों को नए नोट आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन पूरे भारत में शायद ही कहीं ऐसा हुआ होगा कि किसी को धक्का मुक्की के बिना नए नोट आसानी से मिल गए हों। राजधानी दिल्ली में ही कई जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात करने की नौबत आ गई। अन्य राज्यों से भी इसी तरह की आवाजें आती रहीं। लोगों की शिकायत है कि मोदी सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि हमें आम जनता को कैसे रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए कि हमें दिक्कत नहीं होने चाहिए।
बहुत परेशानी हो रही है इस समय। मेरे यहाँ शादी है लेकिन एक पैसा मतलब गया, लाइन लगाया, जमा तो हो जा रहा है लेकिन मिलने में बहुत परेशानी हो रही है, पैसे है ये नहीं बैंक में।
लेकिन भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों ने अच्छे इंतजाम किए हैं।
बद इंतजामी होती, ढाई दिन के अंदर लगभग 8-9 लाख करोड़ लोगों को बैंक्स एंटरटेन कर पाते ऐसा संभव नहीं था। सोमवार को जो गुरुपूर्व का त्यौहार है वो कुछ राज्यों में छुट्टी है और कुछ राज्यों में जो पश्चिम और दक्षिण के राज्य हैं, पूर्व के राज्य हैं, वहाँ छुट्टी नहीं है। तो जिन राज्यों में फंक्शनिंग है सोमवार को उन राज्यों में चलती रहे।
वित्त मंत्री ने खुद ये बात मानी है कि नए नोट ATM मशीनों में ठीक से फिट ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है जिसे 1-2 हफ्ते में दूर कर लिया जाएगा। तो क्या सरकार ने नोट बदलने की ठीक से तैयारी नहीं की थी और आनन फानन में नोट बंद कर दिए? आर्थिक मामलों की जानकार सुषमा रामचंद्रन।
असल में जो लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स वहां से RBI से हर बैंक तक जाता है और बैंक से हर बैंक अपने हर ब्रांच में ले जाता है, हर ब्रांच अपने ATMs में देता है। तो ये जो करेंसी का जो मूवमेंट था, ये पहले 2-3 दिन पहले से ही या 4-5 दिन पहले से ही शुरू किया जाना चाहिए था कि भाई इससे अब तक हमारा ATMs के पास एक रात पहले हमारा करेंसी तैयार है यहाँ पर डालने के लिए। वो कह रहे हैं 2-3 हफ्ते। अब 2-3 हफ्ते तो बहुत लंबा टाइम है। आपको पहले इसका मतलब है कि कम से कम 1 हफ्ते पहले ये शुरू कराना चाहिए था।
एक ओर लोगों को नए नोट नहीं मिल रहे, उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही, वहीं दूसरी ओर इस मामले में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। इस कड़ी में कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया।
जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था।
वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मदद के लिए आगे आने की बात कर रहे हैं।
महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर सब एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं और उन सबको हमारी मदद की जरूरत है। जहां भी आपको लाइन दिखाई दे, जहां भी आपको लोग दिखाई दें, आप जाके उनकी मदद कीजिए, पानी देने का काम कीजिए और फॉर्म भरने में मदद कीजिए।
इन सब बयानबाजियों से दूर जापान की यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि वो आने वाले दिनों में फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप हैरान रह जाएंगे।
बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूँ।
मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी भारत के हर राज्य, हर शहर, हर कस्बे में हालात ये हैं कि लोग सुबह से बैंक और ATM के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें पुराने नोटों से मुक्ति मिलेगी और नया गुलाबी नोट हाथ में आएगा। लेकिन नए गुलाबी नोटों को हासिल करने की राह अभी इतनी भी आसान नहीं है। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
भारत में कहा जाता है कि चुनावों में काले धन की बड़ी भूमिका होती है, जहां करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। लेकिन अब जबकि 1000 और 500 के नोट बदले जा रहे हैं और सरकार हर नोट का हिसाब मांग रही है, ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर नजर आएगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की।
इसका तो असर ऑलरेडी दिखने लग गया है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स द्वारा, उससे साफ जाहिर होता है कि बड़ी स्टेट ऑफ पैनिक में हैं ये लोग, क्योंकि इनके पांव तले जमीन खिसक गई। इलेक्शन का टाइम था, तमाम कैश 1000 करोड़ रुपया समझा जाता है कि इन लोगों के पास था और उसको इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया था, लेकिन जिस तरीके से जो हालात एकदम से जो पैदा हुए उस तरह अब इनके समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का चुनाव कैसे कंडक्ट करेंगे। अभी भी जो रैलीज हुई थी यहाँ पे तो उसमें तमाम पैसा चलाया गया था, खूब समाजवादी पार्टी की रैली में भी और मायावती की भी रैली में तमाम गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट्स के दिख रही थी, जो ब्रांड न्यू गाड़ीज और पता ये लगा कि सब कैश पे खरीदी गई थी। यहाँ तक सुनने में आया है कि मायावती तो क्योंकि फीस लेती हैं हर टिकट के लिए, जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी अंदर अंदर घबराए हुए हैं, वो तो मुखालफत भी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हालत खस्ता है क्योंकि सब ब्लैक मनी के ऊपर ही सबकी राजनीति चलती है।
ये बताइए कि जब काला धन है वो पार्टियों के पास नहीं रहेगा तो ऐसे में फिर चुनाव किस तरह की तस्वीर हमें इस बार नजर आ सकती है?
मुझे लगता है कि वापस चुनाव उसी तरीके से हो जैसे शायद 50s में हुआ करता था, 60s में हुआ करता था कि लोग जमीन पे उतरते थे, जाके घर घर मिलते थे और अपने इस तरह कैंपेनिंग करते थे जिसमें पैसा नहीं लुटाया जाता, जिसमें शराब नहीं लुटाई जाती थी, जिसमें नाजायज हरकतें नहीं होती थी, न बंदूकों का इस्तेमाल होता था। तो वापस उसी दौर में चला जाएगा और इसका असर पड़ेगा क्योंकि ये मौका है जब ये दिखलाया जा सकता है कि बगैर काले धन के भी चुनाव किया जा सकता है।
शरद जी, आप तो उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से चुनाव और सारी सियासत को देखते समझते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना खर्चा आता है?
जब 1-1 करोड़ रुपया लोग टिकट के लिए देते हैं तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो खुद बताते हैं लोग कि 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया मिनिमम खर्च हो जाता है एक विधानसभा के लिए, लोकसभा में इसका 3-4 गुना खर्च होता है। तो आप जब आप सोचिए तो 5 करोड़ रुपया आदमी एक एमएलए बनने के लिए खर्च करता है तो पहला उद्देश्य उसका बनने के बाद ये होता है कि किस तरह वो 5 करोड़ वसूल करे। तो जो 5 वर्ष उसके टेन्योर के हैं, टर्म के हैं, वो इसी में निकल जाते हैं कि किस तरीके से वो अपनी तिजोरी भरे, उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता।
चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सरकारी हाई स्कूल में एक शिक्षक ने 9वीं व 10वीं कक्षा की छात्राओं के बाल काट दिए। शिक्षक का कहना है कि उसे लड़कियों का जुल्फ लहराते हुए आना पसंद नहीं था, इसलिए उसने क्लासरूम में ही 7 छात्राओं के बाल काट दिए। छात्राएं जब घर पहुंची तो परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस शिक्षक को हिरासत में लिया गया। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
रायगढ़ के नहरपाली शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित के शिक्षक पुष्पेंद्र पटेल का कहना है कि वे छात्राओं से बार बार कहते थे कि वे अपने बाल छोटे रखें। उन्हें लंबे बालों से गुस्सा आता है और पटेल मानते हैं कि लंबे बाल रखने का मतलब है कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही हैं और जुल्फ लहराती हुई फैशन कर रही हैं। पटेल की नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने कैंची ली और क्लासरूम में ही 9वीं और 10वीं कक्षा की 7 छात्राओं के बाल काट डाले। शिक्षक पुष्पेंद्र पटेल कहते हैं,
मैं इतना मैं चाहता था कि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिंपल रहना चाहिए और कोई वजह नहीं।
लेकिन जिन छात्राओं के बाल काटे गए हैं उनका कहना है कि वे कक्षा में अव्वल आती रही हैं और उनके बालों का फैशन से कोई लेना देना नहीं है।
वैसे हम लोग नहीं किए, जुल्फ लटका के नहीं आते थे हम लोग। बहुत खराब लग रहा है बाल काटे तो, बाल काट के वहीं पे रख दिया हम लोग, पकड़े थे बाल को, घर में आके उसी दिन बताया शाम को।
अनुशासन के नाम पर छात्राओं के बाल काटे जाने से उनके परिजन भी हतप्रभ हैं।
आज पुष्पेंद्र गुरुजी बाल काट, तो मैं बोले कासे काटिस, तो कैंची से, काकर बाल काटिस, तो हमारे क्लास में 3 लड़की के और 10वीं क्लास में 4 लड़की के। जब मैं पूछे कितना लड़की रहा और कितना लड़का रहा तो लगभग 60-70 हमारे क्लास आदमी में सबके सामने।
पीड़ित छात्राओं के माता पिता की शिकायत पर शिक्षक पुष्पेंद्र पटेल को हिरासत में लिया गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान का कहना है कि शिक्षक से अभी पूछताछ चल रही है।
गणित के शिक्षक द्वारा उन बालिकाओं के बाल ये कहते हुए कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो, ये जुल्फे लहराने आई हो और स्वतः उनके द्वारा काट दिया गया, उस शिक्षक के द्वारा इस तरीके से सार्वजनिक तौर से उनके बाल काटने से बालिकाओं ने अपने आप को अपमानित महसूस किया।
पुलिस कार्रवाई के बाद स्कूल प्रबंधन ने भी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। स्कूल प्रबंधन पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन जिन छात्राओं के बाल काटे गए हैं उन्होंने फिलहाल स्कूल आना बंद कर दिया है। छात्राएं देर सवेर शायद स्कूल आने लग जाएं, लेकिन बाल को फैशन और उसे पढ़ाई से जोड़कर देखने वाली मानसिकता में बदलाव शायद आज ज्यादा बड़ी जरूरत है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और इस रिपोर्ट के बाद अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रभात, क्या कह रहे हैं अखबार आज?
जी, पिछले दो तीन दिन की तरह आज भी जो पुराने नोट हैं उनको बंद करवाने के लिए जो अफरा तफरी मची हुई है, उसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने जो कल जापान में कहा है कि इस भारत एक बड़ा देश है, इस तरह की तकलीफें होना लाजमी है, लेकिन इस तरह के और भी कड़े एक्शन हो सकते हैं, ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान कि ATM अभी दुरुस्त होने में 2 हफ्ते लगेंगे, यानी 2 हफ्ते लोगों को और परेशानी हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स ने ही ये भी छापा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ठीक हो गई हैं और अस्पताल से बाहर हो सकती हैं, ये चेन्नई के अपोलो अस्पताल का बयान है। इसके अलावा मोहनलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, द इंडियन एक्सप्रेस पेपर में बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन, ऐसी एक तस्वीर छपी हुई है और फुटपाथ पर हताश और निराश एक महिला बैठी हुई है, जो कि ये बताती है कि इस समय क्या देश में नज़ारा चल रहा है। एक बड़ी दिलचस्प खबर छपी है कि मध्य प्रदेश में इंडेक्स, हैप्पीडेक्स इंडेक्स लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो गई है, यानी कि प्रदेश के लोगों से पूछा जाएगा कि आप शिवराज सिंह चौहान की सरकार के राज में कितने खुश हैं, और मार्च
है।
जी, और इसकी तैयारी के लिए मंत्रियों से सवाल पूछे गए थे हैप्पीडेक्स इंडेक्स ट्रायल के तौर पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मंत्री अगर खुश हैं तो जनता जो है
जनता
वो दुखी रहेगी, ऐसा माना मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा संडे स्टेट्समैन में खबर छपी है कि ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि जो पुराने नोट बंद करने से जो अफरा तफरी का माहौल मचा है, इस मुद्दे पर वो लेफ्ट के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, उनका ये बयान छपा हुआ है। इसके अलावा संडे टाइम्स में एक खबर बॉम्बे की छपी है, मुंबई की छपी हुई है, जिसमें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल के एक व्यक्ति को जो बलात्कार का आरोप झेल रहे हैं उनको बेल दे दी है। वो 10 साल की एक लड़की से बलात्कार का आरोप के अभियुक्त हैं। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे। और अब बारी है BBC न्यूज़ मेकर्स की। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कप्तान वंदना कटारिया से बात कर रही हैं राखी शर्मा।
नमस्कार, BBC न्यूज मेकर्स पर मैं राखी शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वंदना कटारिया से। वंदना भारत की सीनियर हॉकी खिलाड़ी हैं, जो करीब 150 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हैं। खास बात यह है कि हाल ही में उन्हें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहली बार भारतीय टीम की कमान सौंपी गई, और उन्होंने भी निराश न करते हुए सिंगापुर में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत को खिताबी जीत दिलाई। वंदना, कप्तानी का आपका पहला एक्सपीरियंस और अपने इस पहले ही अनुभव में आपने शानदार गोल लगा दिया, कैसी रही चीन पर खिताबी जीत?
मेरे को पता नहीं था कि मतलब मैं कैप्टन हूँ। जैसे दोपहर में टीम डिक्लेयर हुई थी तो मेरे को शाम को पता चला कि मतलब मैं कैप्टन हूँ। एज ए कैप्टन जो मेरे साथ में सीनियर प्लेयर थे और जूनियर थे, वो लोग सब बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब जो मैं बोलती थी वो सब करते थे। मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बोलने के लिए, उन लोग को खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी कि उनको क्या करना।
भारतीय महिला टीम जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई थी तो कुछ जख्म भी ताजा थे रियो ओलंपिक्स की हार के, ऐसे में जब इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा लेने गई थी तो क्या टारगेट सेट किया हुआ था टीम ने?
अभी हम लोग ओलंपिक खेल के जब हम लोग आए और 36 ईयर के बाद जो ओलंपिक क्वालिफाई किया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वहाँ पे अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट देंगे, बट उतना नहीं हो पाया। पर ओलंपिक का हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया, मतलब गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टीमें थी, खेलने को मिला, उनका एक्सपीरियंस मिला, तो उस एक्सपीरियंस को हम लोगों ने मतलब और हार्ड वर्क किया, तो अभी उसका वही रिजल्ट था कि हम लोग को मतलब उसका फायदा मिला ओलंपिक में जाने का। भी
फाइनल मुकाबला अंत तक 1-1 तक चल रहा था, 1 मिनट कुछ बचा था, तब आपको लगा था कि पेनल्टी शूट आउट में जाने वाला है मुकाबला?
हाँ जी, 30 सेकंड बचा था, तो उससे पहले एक गोल मिस हो चुका था एक्चुअली, फील्ड गोल, तो मेरे को लगा शायद पेनल्टी शूट आउट पे जाएगा, बट उतनी देर में पीछे से गोल आई रानी के पास, तो रानी ने पेनल्टी कॉर्नर बनाया लास्ट के 20 सेकंड पे, फिर दीपू दीदी ने उस पेनल्टी कॉर्नर पे गोल किया। पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क करके मतलब ये जीता टूर्नामेंट, गोल हुआ सबकी उससे। फिर 17 सेकंड बचे थे तो गोल हो चुका था, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब पेनल्टी शूट आउट पे नहीं जाएगा, अब हम लोग जीत गए हैं।
दीपिका ठाकुर टूर्नामेंट की बेस्ट खिलाड़ी चुनी गई। एक बात हमें मालूम चली कि आप दीपिका को दीपिका दीदी कहते हो, किस तरह का तालमेल है इस सीनियर खिलाड़ी के साथ?
मैं जब 2008 जूनियर टीम में आई थी तो मतलब मेरे फेवरेट प्लेयर थे वो, और है अभी भी, उन्होंने 8 अभी 4 गोल किया है, तो थोड़ा वो सीनियर भी है मुझसे, तो इसलिए उनको दीपू दीदी बोलते हैं, मुझसे सीनियर है वो।
और वंदना, आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं, इस टूर्नामेंट में?
मेरी परफॉर्मेंस ठीक थी, मतलब टीम को भी लेके चलना और मेरे को भी खेलना है तो मतलब मेरा ठीक ही था, बस मिसिंग मैंने बहुत मिसिंग गोल किया है, मेरे को भी बहुत गोल चांसेस मिले हैं बट मैंने उतने अवेल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे भी गोल करने थे और क्योंकि मेरे को चांसेस मिले वो मैंने बहुत मिस किए।
वंदना, पहले मेंस टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, उसके बाद वुमेन टीम ने अब खिताब जीता है, ये जीत क्या मायने रखती है भारतीय महिला हॉकी में?
इस मेडल से हम लोग को मोटिवेशन मिला है क्योंकि आगे अभी हमारे और टूर्नामेंट है, अभी हम लोग 12-13 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए, तो और भी मतलब टूर्नामेंट है, इससे हम लोग को मेडल से बहुत मोटिवेशन मिलेगा।
वरना जाहिर सी बात है अब बहुत सारी चीजें भारतीय महिला हॉकी में बदल चुकी है, टीम अब जीतने लगी है, रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया 36 साल बाद, आपको लगता है कि अब सही समय है जब महिला हॉकी खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस करें फाइनेंशियली और इस गेम को सीरियसली लें?
या एक्चुअली जैसे पहले हमारे सीनियर प्लेयर थे उन लोग के मेडल वगैरह आते थे बट उन लोग को इतना वो नहीं कर पाते थे, मतलब जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट हुआ अपना और हॉकी इंडिया जैसे अभी करता है, और अपने स्टेट गवर्नमेंट अगर हम लोग जीत के आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो लोग भी अनाउंस कर देते हैं, और जो अदर स्टेट होते हैं उनमें से भी किसी को अगर कोई गेम अच्छा लगता है तो वो लोग अनाउंस कर देते हैं, और हॉकी इंडिया ने स्पेशली मतलब इतना ज्यादा हेल्प करते हैं वो लोग प्लेयरों की हेल्प और उनको मोटिवेशन देते हैं कि उन्होंने इतने अवार्ड्स निकाले, प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट स्ट्राइकर, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट मिडफील्ड सभी वो निकाल हर साल मिलते, तो उससे हर प्लेयर को भी मोटिवेशन मिलता है, हर प्लेयर सोचता है कि मैं अच्छा करूं, मतलब मैं अच्छा करूं, पब्लिक भी जानने लगी है अभी प्लेयर्स को।
वरना बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीबीसी हिंदी से बातचीत के लिए।
थैंक यू।
वंदना कटारिया से बात कर रही थी राखी। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में कल इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 114 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की पहली पारी 488 रनों पर समाप्त हुई। क्या कुछ हुआ पूरे दिन, सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच अब ड्रॉ की तरफ बढ़ चला है। बल्लेबाजों के अनुकूल पिच पर कल खेल के चौथे दिन भी बल्लेबाज छाए रहे। कल जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 114 रन था। सलामी बल्लेबाज कप्तान एलिस्टियर कुक स्टंप के समय 46 और हसीब हमीद 62 रन बनाकर नाबाद थे। इससे पहले भारत ने कल 4 विकेट पर 319 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पहली पारी 488 रनों पर समाप्त हुई। भारत के कप्तान विराट कोहली 40 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर हिट विकेट हुए। उनके अलावा अजिंक्य रहाणे 13 रन बनाकर जफर अंसारी की गेंद पर बोल्ड हुए। तब लगा कि शायद इंग्लैंड को बड़ी बढ़त मिलने वाली है, लेकिन आर अश्विन ने 139 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 70 और विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने 35 रन बनाकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इंग्लैंड के मोइन अली ने 82 रन देकर 2, जफर अंसारी ने 77 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन सबसे कामयाब साबित हुए लेग ब्रेक गेंदबाज आदिल रशीद जिन्होंने 114 रन देकर 6 विकेट झटके। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को 49 रनों की बढ़त मिली। फिलहाल उसे मिलाकर इंग्लैंड के पास 163 रनों की बढ़त है और दूसरी पारी में उसके 10 विकेट बाकी हैं। कल एक तरफ जहां इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाज 37 ओवर की गेंदबाजी के बाद भी इंग्लैंड का 1 विकेट भी नहीं ले सके, वहीं भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने कहा कि आज भारतीय टीम इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए मैदान में उतरेगी, न कि इंतजार करेगी कि इंग्लैंड भारत के सामने जीत का लक्ष्य रखे।
No, I'm not thinking anything like that. As long as we take wickets in the morning, that is more concern for us rather than we waiting for what England is going to do. So we got to take wickets. That's our main aim.
खैर, ये तो अब आज के दिन का खेल बताएगा कि मैच में क्या कुछ होगा।
पहले टेस्ट मैच का हाल सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में एक सूफी दरगाह में हुए धमाके में 52 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये दरगाह कराची के उत्तर में बलूचिस्तान प्रांत में आती है। कोलंबिया सरकार और फार्क विद्रोहियों ने हवाना में एक नए शांति समझौते का ऐलान किया है जिसमें देश के अलग अलग तबकों के सुझाए गए बदलावों को शामिल किया गया है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में हार के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अमरीका की संघीय जाँच एजेंसी FBI के निदेशक को जिम्मेदार ठहराया है। हिलेरी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले FBI निदेशक जेम्स कूमी ने उनके ईमेल की दोबारा जांच करवाने की जो बात कही उससे उनके चुनाव प्रचार अभियान को जबरदस्त धक्का पहुंचा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कराने का उनकी सरकार का फैसला भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को फिलहाल विदा दें। नमस्कार।